हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, यहाँ हजारों कहानियाँ हैं आपके लिए। 361। ये सब मन में सोचते हुए बंगले के हॉल में बेचैनी से टहलती हुई वो काफ़ी देर से अक्षत का नंबर डायल कर रही थी, लेकिन दूसरी तरफ से अक्षत कॉल रिसीव नहीं कर रहा था। इसके अलावा नैना को इस बारे में कोई आइडिया नहीं था कि अक्षत उस वक्त कहाँ हो सकता है। नैना वहीं पर थी। कुछ देर बाद विवान इवेंट में जाने के लिए पूरा तैयार होकर वहाँ आया। उसने व्हाइट रिप्ड जीन्स के साथ व्हाइट टी शर्ट और डार्क ऑरेंज कलर का ब्लेजर पहना हुआ था, साथ ही ब्राउन सनग्लासेस और सेट किए हुए बालों में विवान काफ़ी ज़्यादा हैंडसम लग रहा था। उसने व्हाइट और ऑरेंज मिक्स कलर के ही अच्छे स्पोर्ट शूज़ भी पहने हुए थे और एकदम कंप्लीट हीरो वाला लुक लग रहा था उसका। नैना की जगह कोई और भी लड़की होती तो उस वक्त वो विवान पर फ्लैट हो जाती, लेकिन नैना तो अक्षत से ही प्यार करती थी और सिर्फ उसकी तरफ ही उस नज़र से देखती थी। इसके अलावा विवान उसका छोटा भाई था और नैना का काफ़ी अच्छा दोस्त और कोएक्टर भी। क्योंकि नैना अक्षत को कॉल करते हुए अपनी ही परेशानी में थी, क्योंकि उसकी अक्षत से बात नहीं हो पा रही थी, इसलिए नैना ने विवान की तरफ ज़रा सा ध्यान भी नहीं दिया और परेशान होकर बार बार अपने मोबाइल फ़ोन से अक्षत का नंबर डायल करती जा रही थी। विवान ने जब उसे इस तरह से नोटिस किया तो उसके सामने आते हुए बोला, क्या हुआ नैना, इतनी परेशान क्यों लग रही हो, और तुम पूरा रेडी भी नहीं हुई हो अब तक, हमें जाना है ना इवेंट के लिए। विवान ने उसे याद दिलाते हुए ये सब कुछ पूछा। उसकी आवाज़ कानों में पड़ते ही नैना ने नज़र उठाकर उसकी तरफ देखा और बोली, अरे वाह, तुम तो रेडी भी हो गए, और मेरे लिए रुकोगे या फिर नहीं, क्योंकि मुझे अभी थोड़ा टाइम लगेगा। विवान ने बेबसी से अपना सिर हिलाते हुए कहा, कोई और ऑप्शन है क्या मेरे पास, रुकना ही पड़ेगा मुझे तो, साथ ही तो जाना है ना हम दोनों को। वैसे ये बताओ कि तुम रेडी क्यों नहीं हुई अब तक, और ऊपर से इतनी परेशान भी लग रही हो, क्या कोई प्रॉब्लम है। नैना उसी तरह परेशान से बोली, हाँ प्रॉब्लम तो है, ये तुम्हारे भैया, देखो उनका कॉल ही नहीं लग रहा है, मैं कब से ट्राई कर रही हूँ, वैसे तुम्हें बताकर गए हैं क्या हो। नैना की बात सुनकर विवान उसका मोबाइल फ़ोन उसके हाथ से लेते हुए बोला, लाओ ये मुझे दो और बस करो, क्योंकि भाई मुझे बताकर गए हैं इस बारे में, पहले ही पूछ लेती ना एक बार मुझसे, वो उनका कोई आउटडोर शूट है और फिर वहाँ से वो रागिनी से मिलने के लिए भेजाएंगे, और वो सारी लोकेशन ऐसी है जहाँ पर नेटवर्क नहीं होता, इसलिए बार बार नंबर मत डायल करो और जाकर रेडी हो जाओ, हमें बस निकलना है आधे घंटे में। विवान की बात सुनकर नैना थोड़ी कन्फ्यूजन से बोली, अरे लेकिन अक्षत मुझे क्यों नहीं बताकर गया इस बारे में, कम से कम एक मैसेज ही कर देता। नैना को फिर से परेशान होते देखकर विवान ने उसे पूरी बात समझाते हुए कहा, इतनी ज़्यादा टेंशन में है इस वक्त भाई, भूल गए होंगे, और वैसे मुझे भी उन्होंने खुद से नहीं बताया, मैंने जब उन्हें निकलते हुए देखा था तो मैंने खुद ही उनसे पूछ लिया था, तो उन्होंने मुझे बता दिया, और तुम भी तो यहाँ पर थी भी नहीं ना, कल रात से लेकर तुम सुबह तक वहाँ हॉस्पिटल में ही तो रुकी हुई थी, और तुम्हारा भाई से आमना सामना ही नहीं हुआ, तो कब बताते वो तुम्हें। उसके बाद सुनकर नैना थोड़ी मायूसी से बोली, हाँ तुम शायद ठीक कह रहे हो विवान, और रुको मैं ना आधे घंटे से पहले ही रेडी होकर आ जाऊंगी, वैसे भी मैं शावर ले चुकी हूँ और कपड़े निकाल कर रखे हैं मैंने, लेकिन जाने से पहले सोचा था एक बार अक्षत से बात हो जाती तो सही रहता। विवान ने अपनी आंखें छोटी करके उसकी तरफ देखा, अच्छा तो भाई से बात नहीं हुई तो क्या तुम्हारा इवेंट पर भी फोकस नहीं रहेगा, ये लवर्स क्या करूँ मैं इनका, उसने बहुत ही ज़्यादा ड्रामा करते हुए कहा, तो नैना ने मुस्कुराकर हल्के से उसकी बाँह पर मारा और फिर वहाँ से सीधा ही अपने रूम की तरफ बढ़ गई। नैना रेडी होने के लिए चली गई। उसके जाते ही विवान उसका और अपना दोनों मोबाइल फ़ोन लेकर वहीं सोफे पर बैठ गया। उसने नैना का मोबाइल साइड में रखा और अपना मोबाइल निकालकर यूज़ करने लगा। दूसरी तरफ आज रागिनी ने अक्षत को मिलने के लिए उसकी शूटिंग लोकेशन के पास वाले एक रिजॉर्ट में बुलाया था, जहां पर उसने पहले ही अपने लिए एक रूम बुक कर रखा था। वहां पर वो काफ़ी टाइम से अक्षत का वेट करती हुई बार बार अपनी घड़ी देख रही थी। विवान ने पहले ही अक्षत को बता दिया था कि आज वो अवेलेबल नहीं रहेगा, इसीलिए अक्षत आज विवान के साथ नहीं बल्कि अपने असिस्टेंट अजय के साथ वहां पर आया था, और विवान या फिर किसी भी और को वहां की लोकेशन के बारे में नहीं पता था। रागिनी को अजय के बारे में नहीं पता था क्योंकि अजय वहां शूटिंग लोकेशन के पास ही रुककर अक्षत का इंतजार करने वाला था। रागिनी से मिलने जाने से पहले अक्षत ने अजय को लोकेशन बता दी थी, क्योंकि उसे रागिनी पर बिल्कुल भी भरोसा नहीं था। कुछ देर बाद उस रिजॉर्ट के अंदर अक्षत पता नहीं क्यों आज वहां पर जा रहा था, उसे कुछ भी ठीक नहीं लग रहा था और बहुत ही अजीब सी फीलिंग आ रही थी। उस रिजॉर्ट की गैलरी में बढ़ते हुए अक्षत ने गहरी सांस ली और पता नहीं क्यों उसे अपने कदम थोड़े भारी लग रहे थे और वो उस तरफ बढ़ नहीं रहे थे, लेकिन कुछ और सोचते हुए अक्षत ने अपने दिमाग को थोड़ा सा शांत किया और फिर वो रूम नंबर 107 जो कि रागिनी ने उसे मैसेज किया था उसकी तरफ ही बढ़ गया। वो उस रूम के दरवाजे के सामने पहुंचा तो उसे ऐसा लगा जैसे कि कोई उसका पीछा कर रहा हो या फिर उस पर नज़र रखे हुए हैं। ऐसा महसूस होते ही अक्षत पीछे मुड़कर देखा, लेकिन उसे कोई भी नज़र नहीं आया, तो फिर उसने दरवाजे पर हल्के से नॉक किया। दरवाजे पर हाथ लगाते ही अक्षत को समझ आ गया कि दरवाज़ा खुला ही हुआ है, और वो दरवाज़ा जैसे ही खुलता है वैसे ही उसके कानों में रागिनी की आवाज़ पड़ी, आओ अक्षताओ, मैं बस तुम्हारा ही तो इंतजार कर रही थी। वैसे काफी इंतजार करवा रहे हो तुम मुझे। रागिनी वहां पर सामने बेड पर लेग क्रॉस करके बैठी हुई थी। बहुत ही अजीब तरह से मुस्कुरा रही थी और वो रूम भी किसी नॉर्मल होटल रूम की तरह नहीं लग रहा था। अक्षत को वहां कुछ तो अजीब और कुछ गड़बड़ भी लग रही थी। अंदर आते हुए अक्षत ने रागिनी की बात का जवाब देते हुए कहा, मैंने तो तुमसे पहले ही बताया था कि मैं अभी शूटिंग में बिजी हूँ, मुझे यहाँ आने में टाइम लगेगा, तो तुम क्यों इतनी देर से वेट कर रही हो? और वैसे भी यहाँ मिलने की कैसे सोची तुमने? तुम्हें नहीं लगता कि अगर किसी ने हमें यहाँ देख लिया तो? अक्षत की ये बात सुनकर रागिनी थोड़े से गुस्से में अपनी जगह से उठकर खड़ी हो गई और बोली, देख ले तो देख ले, तुम्हें किस बात का डर है? वैसे भी तुम्हारा ब्रेकअप हो गया है ना अपनी गर्लफ्रेंड से, तो फिर अब अपने होने वाले बच्चे और वाइफ की जिम्मेदारी तो उठाओगे ना तुम, तो क्या हुआ अगर सबको इस बारे में पता भी चल जाए? रागिनी की ये बात सुनकर अक्षत बहुत ही ज्यादा परेशान हो गया, क्योंकि अब तक तो रागिनी भी इन सब बातों को छुपाकर रखने के लिए उसके साथ राजी थी, लेकिन आज वो एकदम से ऐसी बातें कर रही है जिसे सुनकर अक्षत की तो सिट्टी पिट्टी गुम हो गई, क्योंकि उसने ऐसा कुछ भी नहीं सोचा था और वो नहीं चाहता था कि जो बच्चा उसका है ही नहीं उसके बारे में मीडिया न्यूज में झूठी अफवाह फैले या फिर ये बात किसी को भी पता चले, क्योंकि उसे पता था रागिनी उससे झूठ बोल रही है।
लेकिन अब अक्षत रागिनी के सामने सीधी तरह से ये बात तो नहीं बोल सकता, इसलिए अपने मन में ये सब सोचता हुआ वो थोड़ा सा आगे आया और बड़े ही आराम से बोला, क्या बोल रही हो रागिनी, तुम इससे हमारी रेप्यूटेशन पर कितना असर होगा तुम्हें पता भी है, और लोग तो बात का बतंगड़ भी बना देते हैं। फिर अभी तक ना ही मेरे तुम्हारे अफेयर की खबरें थीं, ना डेटिंग की, और शादी तो अभी दूर दूर तक तो नज़र नहीं आ रही, तो ऐसे में क्या बोलेंगे सब? वो सब हमारे बच्चे को नाजायज़ कहेंगे, क्या तुम वो सब सहलोगी? इस पर रागिनी थोड़ा सा सोच में पड़ गई, लेकिन फिर वो अक्षत की बात का जवाब देते हुए बोली, नहीं, हम ये बोल देंगे ना कि हमारी एंगेजमेंट हो चुकी है, और रही मेरी प्रेगनेंसी की बात तो हम अभी अनाउंस नहीं करेंगे, तब तो सब ठीक हो जाएगा ना, बस तुम मेरे साथ रहो ना अक्षत। इतना बोलते हुए रागिनी ने अक्षत का हाथ अपने हाथों में पकड़ लिया और उसकी तरफ ही देखने लगी। तभी अक्षत ने ऊपर से नीचे तक उसे नोटिस किया और एकदम सीरियस होकर बोला, अरे लेकिन कितने दिनों तक ये बात छुपा पाओगी? कुछ ही दिनों में तो तुम्हारी बॉडी में चेंजेस भी आ जाएंगे ना, और वैसे भी जब हम मिले थे और ये सब कुछ हुआ उस दिन को 2-3 महीने हो चुके हैं ना, ऐसे में तुम सब कुछ कैसे मैनेज करोगी? अक्षत की ये बात सुनकर रागिनी ने कोई भी जवाब नहीं दिया और वो थोड़ा सा परेशान होकर कुछ सोचने लगी। सही कह रहा हूँ ना मैं? बताओ कहाँ खो गई अब? अक्षत ने जानबूझकर ये सवाल पूछा, क्योंकि वो इस सवाल पर अभी रागिनी का रिएक्शन देखना चाहता था, और रागिनी भी उसके इस सवाल पर थोड़ा सा हड़बड़ा गई। रागिनी काफ़ी ज़्यादा अटकती हुई बोली, एकदम सही, हाँ सही सही कह रहे हो तुम, और 3 महीने हो गए क्या उस पार्टी को? मुझे तो याद ही नहीं रहा सच में। उसे ऐसे अटकते देखकर अक्षत ने अपने मन में कहा, याद कैसे रहेगा, झूठ जो बोल रही हो, क्योंकि झूठ के पैर नहीं होते, नहीं तो ऐसी इंपॉर्टेंट डेट कोई भी लड़की नहीं भूलती। ये बात सोचते हुए अक्षत के चेहरे पर जीतने वाली मुस्कुराहट आ गई, लेकिन वो अपनी मुस्कुराहट छुपाते हुए बोला, हाँ ठीक है कोई बात नहीं, तुम्हें याद नहीं रहा तो मैंने याद दिला दिया ना, बोलो अब क्या करना है आगे? अक्षत की बात पर रागिनी ने 1 मिनट के लिए कुछ सोचा और फिर अपनी जगह से उठकर खड़ी होती हुई एकदम से बोली, हाँ शादी, एक काम अक्षत, चलो तुम ना मुझसे कोर्ट मैरिज कर लो, और हम ये अभी रिवील नहीं करेंगे, और जब प्रेगनेंसी का टाइम होगा हम तब बोल देंगे कि हम 1 साल से मैरिड हैं, और उसके लिए हम फेक सर्टिफिकेट भी बनवा लेंगे सिर्फ मीडिया को दिखाने के लिए, इससे कोई भी हमारे होने वाले बच्चे को कुछ भी नहीं बोल पाएगा। रागिनी ने बड़े ही आराम से ये सारी बात बोली, जैसे कि उसने पहले से ही ये सब कुछ सोचकर प्लान करके रखा हुआ है और उसके लिए ये सब करना कोई बड़ी बात ना हो। लेकिन ये बात सुनकर अक्षत बहुत ही ज़्यादा घबरा गया, क्योंकि वो किसी भी कीमत पर रागिनी जैसी धोखेबाज और चालाक लड़की से शादी तो नहीं कर सकता, फिर चाहे वो असली शादी हो या नकली, और उसके कहने पर तो बिल्कुल भी नहीं। इसलिए वो इन सब से कैसे बचे इस बारे में सोचने लगा, लेकिन रागिनी ये सब कुछ बोलते हुए काफ़ी ज़्यादा एक्साइटेड लग रही थी। क्रमशः